ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं दधाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणं। वाञ्छाकल्पतरोभ्यश्च कृपासिन्धोभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंध जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा। तो हम सुन चुके हैं कि हिरण्यकश्यपु ने जब पहली बार प्रह्लाद को अपने गोदी में बिठाकर पूछा कि सबसे अच्छी बात प्रह्लाद को कौन सी लगी जो कि उसने गुरुकुल में सुनी थी, तो प्रह्लाद ने बताया था, न साधुमन्य असुरवर्य देहि नाम सदा समुद्विग्न ध्याम असत्ग्रहात्। उन्होंने कहा था कि जो असत को ग्रहण करते हैं वो सदा चिंतित रहते हैं, क्योंकि वो इंद्र तृप्ति करते हैं, और ऐसे स्थान को ऐसे व्यक्ति को त्यागना चाहिए जहां पे आध्यात्मिक संस्कृति नहीं हो, सभ्यता नहीं हो, और वन में जाना चाहिए। हिरण्यकशिपु हंस पड़े। उसने सोचा कि ये छोटा बच्चा कुछ बड़बड़ा रहा है। शंड और अमरक से कहा कि जरा ख्याल से अभी उपदेश करना। काफी समय उपदेश प्रह्लाद को देने के बाद जब दोबारा प्रह्लाद आए और हिरण्यकश्यपु ने फिर से पूछा वही प्रश्न, तो प्रह्लाद ने भक्ति की परिभाषा दी उनको, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम आदि। इस समय हिरण्यकश्यपु ने शंड और अमरक को बहुत डांटा और शंड अमरक ने कहा कि ये हमारी गलती नहीं है, ये तो इसकी रति जो है ये स्वाभाविक है, न हमने इसको सिखाया है न किसी और ने सिखाया है। तो फिर प्रह्लाद ने हिरण्यकश्यपु ने घूमकर प्रह्लाद से दोबारा पूछा कि अगर किसी ने तुम्हें सिखाया नहीं है तो कहां से आई ये बुद्धि तुम्हारी। उस समय प्रहलाद ने उत्तर दिया, मतिर्न कृष्णे परतः स्वतोवा, कि ऐसे थोड़े लोग होते हैं जिनकी मति कृष्ण में कभी लगती नहीं है, क्योंकि अदांत गोभीर, क्योंकि उनकी इंद्रियां वश में नहीं होती हैं और इंद्रिय तृप्ति करते रहते हैं, पुनः चर्वित चरवणानाम, उसी इंद्रिय तृप्ति के रस का आस्वादन करते रहते हैं जन्म जन्मांतर से। जब हिरण्यकश्यपु ने यह सुना तो अवश्य अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी प्रहलाद महाराज ने अपने उपदेश बंद नहीं किए। प्रहलाद महाराज किस प्रकार के प्रचारक हैं हम देख सकते हैं, बिल्कुल निर्भयता से अपने पिता को भी वो इस प्रकार से प्रचार कर रहे थे। तो इस बार उन्होंने कौन सा श्लोक कहा ये अब हम पढ़ेंगे। ये भी बहुत एक प्रसिद्ध श्लोक है, कंठस्थ करने योग्य है, इसलिए आप सब प्रयास करें कि इस महत्वपूर्ण श्लोक को हम कंठस्थ करें। नते विदुः स्वार्थ गतिम् हि विष्णुम् दुराशयाये बहिरर्थमानिनः अंधा यथान्धेरुपनीयमाना ते पीश तंत्र्याम उरुदाम निबद्धा नते विदुः स्वार्थ गतिम् हि विष्णुम् दुराशयाये बहिरर्थमानिनः अंधा यथान्धेरुपनीयमाना ते पीश तंत्र्याम उरुदाम निबद्धाः। श्रील प्रभुपाद द्वारा जो लोग भौतिक जीवन के भोग की भावना द्वारा दृढ़ता से बंधे हैं और जिन्होंने अपने ही समान बाह्य इंद्रिय विषय से आसक्त अंधे व्यक्ति को अपना नेता या गुरु स्वीकार कर रखा है, वे यह नहीं समझ सकते कि जीवन का लक्ष्य भगवत धाम को वापस जाना तथा भगवान विष्णु की सेवा में लगे रहना है। जिस प्रकार अंधे व्यक्ति द्वारा ले जाया गया दूसरा अंधा व्यक्ति सही मार्ग भूल सकता है और गड्ढे में गिर सकता है, उसी प्रकार भौतिकता से आसक्त व्यक्ति अन्य अपने ही जैसे व्यक्ति द्वारा मार्ग दिखलाए जाने पर सकाम कर्म की रस्सियों द्वारा बंधे रहते हैं, जो अत्यंत मजबूत धागों से बनी होती हैं, और ऐसे लोग तीनों प्रकार के कष्ट सहते हुए पुनः पुनः भौतिक जीवन प्राप्त करते हैं। तो प्रहलाद महाराज ने इस श्लोक के द्वारा इस संसार के लोगों की का विश्लेषण किया है बहुत ही सही ढंग से। यहां मुख्य समस्या ये है कि लोग ये नहीं जानते कि उनका हित किस में है। लोग समझते हैं कि हमारा हित संसार के भोग करने से है, संसार में प्रगति करने में है। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं न ते विदुः, ते मतलब उन लोग, कौन लोग जिनका उल्लेख प्रहलाद महाराज पिछले श्लोक में कर चुके हैं, मतिर्न कृष्ण परतः स्वतोवा, जिनकी मति कभी भी कृष्ण में जागृत नहीं हो सकती, ऐसे लोगों के बारे में प्रहलाद महाराज कह रहे हैं न ते विदुः, ये लोग नहीं जानते हैं। क्या नहीं जानते हैं? स्वार्थ। उनका स्वार्थ क्या है, स्व अर्थ, उनका हित क्या है वो नहीं जानते। अर्थ मतलब हित, स्व मतलब अपने आप। तो जैसे पहली बार भी आप कई बार सुन चुके हैं, स्व के दो अर्थ होते हैं, जो वास्तविक ज्ञान में स्थित है वो जानता है कि स्व मतलब आत्मा, हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है। लेकिन जो लोग इस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर चुके हैं वो सोचते हैं कि हम ये शरीर हैं, तो उनके लिए स्व मतलब शरीर। जब स्व का वास्तविक अर्थ यानी आत्मा हम समझ लेते हैं तो स्वार्थ का मतलब क्या है? आत्मा का हित, जो वास्तविक हमारा हित है, इसको श्रेयस कहते हैं। शरीर के हित को प्रेयस कहते हैं, जो थोड़े समय के लिए लाभ होगा परंतु चिरकाल बने रहने वाला जो हित है वो आत्मा का हित है। वास्तविक मनुष्यों का कल्याण, जीवों का कल्याण इसी में है कि वो अपने सच्चे स्वार्थ को समझें। सच्चा स्वार्थ इस प्रकार से देखा जाए तो आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं है। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं, नते विदुः स्वार्थ गतिम हि विष्णुम्। सबका स्वार्थ अर्थात सबका हित यही है कि वो भगवान विष्णु के शरण में जाएं, भगवान कृष्ण के भक्त बनकर उनके धाम में लौट के चले जाएं। ये सबका हित है। परंतु ऐसे लोग नहीं जानते हैं। क्यों नहीं जानते? क्योंकि वो बाह्य वस्तुओं से बहुत प्रभावित हो चुके हैं। यहां प्रहलाद महाराज कहते हैं, दुराशया, झूठे आशाओं को, बुरे आशाओं को लेकर बैठे हैं अपने मन में और ऐसे सुख के सपने देखते रहते हैं। जीव का इतिहास इस भौतिक जगत में केवल एक है, सपने देखते रहना। बस मैं ये हूं, मैं वो हूं, आज मेरा इतना है, कल उतना मिलेगा। आज सुख नहीं है तो कल तो निश्चित ही मिलेगा, और जब सुख मिलेगा तो ऐसे होगा। तो सपनों के पीछे हर एक आदमी भाग रहा है। दुराशया, ऐसे सपनों से, ऐसे झूठे सुख की प्राप्ति के लिए जब व्यक्ति प्रयत्न करता है तो उसका अहित होता है, उसको केवल इसके लिए दुख मिलता है। कितनी कड़ी मेहनत करता है व्यक्ति संसार के भोग के लिए, और इस कड़ी मेहनत के बदले में उसको क्या मिलता है? दुख, यही उसका पुरस्कार है। कम से कम जो व्यक्ति किसी कारखाने में नौकरी वगैरह करता है, महीने भर परिश्रम करता है, उसे तनख्वाह तो कम से कम मिलती है ना महीने के अंत में। लेकिन यहां इतना परिश्रम करने के बाद भी अंत में मिलता क्या है? दुख मिलता है। और ये इसलिए है कि लोग बाह्य वस्तुओं को मूल्यवान समझते हैं। दुराशया ये वही अर्थ मानिनः, ऐसा मानते हैं कि संसार के विषय के भोग बहुत मूल्यवान हैं, प्राप्त करने योग्य हैं, और इसलिए हर एक व्यक्ति पीछे पड़ा है इन चीजों के, हाथ धोकर पीछे पड़े हैं सब। अभी गाड़ी चाहिए, और भी गाड़ी, बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा टीवी चाहिए, और पैसे चाहिए, क्योंकि दुनिया के चमक धमक से लोग इतने प्रभावित हो गए हैं कि उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और सोचते हैं कि उसके पास चमक धमक ज्यादा है तो मैं भी उससे ज्यादा चमकना चाहता हूं। इस प्रकार से क्या होता है? प्रहलाद महाराज कहते हैं कि सारे लोग समाज में ऐसे चलते हैं नरक की ओर, क्योंकि उनके जो नेता हैं, उनके तथाकथित जो गुरुजन हैं, वो भी आध्यात्मिक दृष्टि से अंधे हैं, उन्हें भी उनका स्वार्थ क्या है पता नहीं है। तो अपने मन गढ़े ढंग से कोई मनोधर्म बना लेते हैं कि इस कार्य में हमारा हित है, उस कार्य में हमारा हित है, और सारे प्रजा को नरकीय गति की ओर ले जाते हैं। जिस प्रकार से एक अंधा आदमी अगर दूसरे अंधे आदमी को हाथ पकड़ के आगे ले जाए तो दोनों ही आज थोड़ी देर में गड्ढे में गिर जाएंगे। अंधा यथांधेर उपनियमानास ते पीश तंत्र्याम उरुदाम ने बद्धाः ते अपि, वो लोग ईश, ईश मतलब भगवान के, तंत्रया मतलब उनके जो नियम है, जो प्रकृति के कानून है, इस कानून से बहुत ही सख्ती से मजबूती से बंधे हुए हैं, लेकिन इस बात को ये लोग जानते नहीं हैं, अपने आप को स्वतंत्र समझते हैं। बंधे हुए रहने पर भी व्यक्ति अपने आप को मुक्त समझता है, ये माया का प्रभाव है। इस प्रकार से प्रह्लाद महाराज ने सुंदर ढंग से विश्लेषण किया हुआ है। प्रह्लाद महाराज ने शंड और अमरक उनके कुल गुरुओं से सुनी ही बातें दोहराई नहीं, प्रह्लाद ने केवल अपने वास्तविक गुरु से जो सुनी थी बातें वो दोहराई। वास्तविक गुरु श्रोत्रिय होते हैं, श्रोत्रिय मतलब जिन्होंने प्रामाणिक परंपरा में ज्ञान अर्जन किया है एक प्रामाणिक गुरु से। इस प्रकार से नारद मुनि एक प्रामाणिक गुरु है सारे ब्रह्मांड के लिए, जगत गुरु है वो। सारे ब्रह्मांड में भ्रमण करके जगह जगह लोगों को भगवत भक्ति में अग्रसर करते हैं। तो प्रह्लाद महाराज ने नारद मुनि की वाणी को दोहराया। शंड और अमरक इन दोनों से प्राप्त किए हुए उपदेशों को दोहराया नहीं, ये दो प्रकार के गुरु थे और प्रह्लाद महाराज अच्छी तरह से जानते थे कि कौन से गुरु की बातों को वास्तव में स्वीकार करना चाहिए। इस प्रकार से प्रह्लाद महाराज अपनी उपदेश जारी रख रहे थे। इसके बाद उन्होंने और एक सुंदर श्लोक कहा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रह्लाद महाराज अपने पिता को उपदेश कर रहे हैं कि वैष्णवों के चरण चिन्हों का आश्रय लेना, वैष्णवों का चरण रज कितना महत्वपूर्ण है, इसके बिना हमारी कोई भी गति नहीं होती है। इस श्लोक को भी श्रील प्रभुपाद कई बार दोहराया करते थे। प्रह्लाद महाराज के जो उपदेश हैं वो हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अनुसरणीय है, सुनने लायक है और अमल करने लायक है। तो आइए ये सुंदर श्लोक हम पढ़ते हैं। नैषा मतिस्तावदुरुक्रमाङ्घ्रिम् स्पृशत्यनर्थापगमो यदर्थः महीयसां पादरजोऽभिषेकम् निष्किञ्च नानां न वृणीत यावत् नैषां मतिस्तावदुरुक्रमाङ्घ्रिम् स्पृशत्यनर्थापगमो यदर्थः महीयसां पादरजोऽभिषेकम् निष्किञ्च नानां न वृणीत यावत्। श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। जब तक भौतिकवादी जीवन के प्रति झुकाव रखने वाले लोग ऐसे वैष्णवों के चरण कमलों की धूली अपने शरीर में नहीं लगाते जो भौतिक कलमश से पूर्णतया मुक्त हैं, तब तक वे भगवान के चरण कमलों के प्रति आसक्त नहीं हो सकते जिनका यशोगान उनके अपने असामान्य कार्यकलापों के लिए किया जाता है। केवल कृष्ण भावना भावित बनकर एवं इस प्रकार से भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करके ही कोई भौतिक कलमश से मुक्त हो सकता है। तो यहां दो शब्द हैं, तावद और यावत, तब तक जब तक। जब हम तब तक का प्रयोग करते हैं साधारण भाषा में तो जब तक भी होगा, है ना। इसी प्रकार से यहां प्रह्लाद महाराज कहते हैं, अंत में देखिए, यावत जब तक निष्किंचना नाम, निष्किंचनाम को, निष्किंचन लोग कौन होते हैं? जिनको इस संसार से कोई संबंध नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है, जो पूरी तरह से इस संसार के भोग वृत्ति से मुक्त हो चुके हैं, जिन्होंने संसार में प्रगति करने के लिए, भोग करने के लिए योजनाएं बनाना बंद कर दिया है, जो पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण के आश्रय में स्थित हैं, ऐसे लोगों को महीयसाम प्रहलाद कहते हैं। महीयसाम मतलब महात्मा, महान आत्मा, जो महान भक्त हैं भगवान के। जब तक ऐसे महान भक्तों के चरण कमलों का रज, महीयसाम पाद रजोभिषेकम, उनके चरण कमलों की जो धूली है, वो धूली लेकर हम अपने आप अभिषेक नहीं कराएंगे अपना, वो चरण धूली से हमारे शरीर को लेप नहीं लगाएंगे, तब तक तावद नैशाम मतिस तावद उरुक्रमांग्रिम स्पृशत अनर्थ अपगमो यदर्थः। तब तक भगवान उरुक्रम के चरण कमलों के प्रति आसक्ति हमारी या आकर्षण उत्पन्न नहीं हो पाएगा। इसका मतलब है कि हमें अगर भगवान के प्रति आकर्षित होना है तो हमें प्रहलाद महाराज के सूत्र या उपाय को स्वीकार करना चाहिए। तो महान वैष्णव के चरण धूलि का अभिषेक लेना, इसका क्या मतलब है? एक तो हां, वास्तव में चरण धूलि का भी प्रभाव होता है, ये हम बारंबार पढ़ते हैं, परंतु इससे ज्यादा इसका महत्व ये है कि महान वैष्णवों के उपदेशों को हम ग्रहण करें। केवल बाहरी रूप से चरण कमलों की धूलि ले ली, सर पे रख लिया, ठीक है, थोड़ा लाभ तो होगा ही, लेकिन वास्तविक लाभ तब होगा जब हम ऐसे महान वैष्णवों के उपदेशों को ग्रहण करते हैं और अपने जीवन में अमल करते हैं। जब तक वैष्णवों की कृपा नहीं होगी तब तक भगवान की कृपा नहीं मिलेगी। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं अपने माधुर्य कादंबिनी ग्रंथ में कि भगवान अपने भक्तों के वश में हैं, इसलिए भगवान हालांकि स्वराट है, पूरी तरह से स्वतंत्र है, किसी को भी किसी भी समय किसी भी तरह से किसी भी मात्रा में कृपा दे सकते हैं, कोई उनको रोक नहीं सकता, फिर भी ये देखा जाता है कि विशेष करके भगवान अपनी कृपा वहां बरसाते हैं जहां उनके वैष्णव भक्त कृपा बरसाते हैं। और यहां पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं न केवल उत्तम अधिकारियों के लिए, मध्यम अधिकारियों के लिए भी, क्योंकि उत्तम अधिकारी तो कोई भेदभाव करता ही नहीं है, जो मध्यम अधिकारी है वो भेदभाव करता है, भेदभाव मतलब गलत दृष्टि से नहीं, उसे भेद करना पड़ता है कि कौन भक्त है कौन भक्त नहीं है, कौन आगे बढ़े हुए भक्त हैं, कौन नौसुखिया भक्त हैं, थोड़ा बहुत भेद करना आवश्यक होता है। हालांकि हम प्रहलाद महाराज से सुन चुके हैं कि कौन हमारा शत्रु है कौन हमारा मित्र है, ये भेद हमें नहीं करना चाहिए। हाँ, ये अवश्य है, और प्रहलाद महाराज एक महाभागवत उत्तम अधिकारी के दृष्टि क्या होनी चाहिए ये बतला रहे हैं, परंतु जब तक व्यक्ति उस स्तर तक नहीं पहुंचता, कृत्रिम रूप से इस सिद्धांत का पालन करना यह उचित नहीं होगा। हृदय से, बुद्धि से हमें जान लेना होगा कि वास्तव में आत्मा के स्तर पर कोई भेद हमें नहीं करना चाहिए, परंतु हमारी भक्ति उतनी सुदृढ़ नहीं होने के कारण हमें भेद इसलिए करना पड़ता है कि अगर हमने गलत संग किया इस सिद्धांत से कि वैसे शत्रु मित्र में कोई अंतर नहीं, तो हो सकता है कि ऐसे गलत संघ के प्रभाव से हमारी भक्ति में हम कमजोर हो जाएं, हम डामाडोल हो जाएं, और प्रचारक भी सोचेगा कि अगर मैं भेद नहीं करूंगा तो प्रचार कैसे करूंगा, जो लोग भगवान को भूल चुके हैं उनका उद्धार कैसे होगा। तो इसलिए इस प्रकार से अपने हित के लिए और दूसरों के हित के लिए इस दृष्टि से भेद करना उचित होता है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जहां मध्यम अधिकारी की कृपा जाती है वहां भगवान की कृपा जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो कई भक्त कई बार ये कहते हैं कि हम चाहते हैं कि केवल अच्छे से अच्छे भक्तों से हम सुने। ये बहुत अच्छी बात है, अवश्य जितने प्रगतिशील भक्तों से ज्यादा हम सुनेंगे उतनी हमारी प्रगति होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर कोई शुद्ध भक्त है हमारे संघ में, शुद्ध भक्त का संग करेंगे तो लाभ अधिक होगा। परंतु हो सकता है कि हर समय संभव न हो। जब श्री प्रभुपाद जी यहां थे शारीरिक रूप में इस धरातल के ऊपर, तो उस समय भी उनका संग, उनके वपुह सबको प्राप्त नहीं होता था। उनके कई शिष्य थे जिन्होंने एक बार भी प्रभुपाद जी से व्यक्तिगत रूप से बात नहीं की थी। कितने हैं, हजारों के संख्या में ऐसे शिष्य हैं। ये ऐसे कई हैं जिन्होंने शायद एक बार कुछ कहा होगा, लेकिन फिर भी उनकी निष्ठा देखिए प्रभुपाद जी के प्रति, उनकी श्रद्धा देखिए, और किस प्रकार से प्रभुपाद के उपदेशों को उन्होंने ग्रहण कर दिया। तो भले प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त हमारे बीच में हो या न हो, अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी हैं तो फिर भी हमें भक्ति में पीछे हटना नहीं चाहिए। हर भक्त से हमें सुनने का प्रयास करना चाहिए। भक्तों का संग करने से जो सिंसियर हैं, जो हृदय से भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, ऐसे भक्तों का संग अवश्य हमें करना चाहिए। ये भाव है जिसका अनुशीलन करना हमारे लिए आवश्यक है। इस भाव का अनुशीलन करने से वास्तव में हम वैष्णवों के दासों के दास बनेंगे, अन्यथा नहीं। तो यहां जब प्रहलाद महाराज कह रहे हैं मही यसाम पाद रजोभिषेकम, वो वास्तव में कहना चाहते हैं कि जब तक व्यक्ति वैष्णवों का दास नहीं बनेगा तब तक वो भगवान के प्रति आसक्त नहीं हो पाएगा। और ये सिद्धांत तो बार बार हमारे शास्त्र में आता है कि वैष्णवों की सेवा करना, वैष्णवों की आराधना उपासना करना कृष्ण की उपासना से श्रेष्ठ है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी ऐसा ही कहते हैं कई बार। ऐसे कई श्लोक हैं, लेकिन हम उस विषय में ज्यादा गहराई में इस समय नहीं जाएंगे। तो प्रहलाद महाराज ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को उपदेश दिया कि हे पिताजी, आपने असुरी भाव को ग्रहण किया है और इसलिए आप विष्णु में श्रद्धा नहीं रख पा रहे हैं, बल्कि आप विष्णु के प्रति द्वेष कर रहे हैं। इसलिए आपके मन के अंदर कभी कृष्णमती जागृत नहीं होगी, और अगर आपको करानी है किसी भी अवस्था में तो जान लीजिए रास्ता एक ही है, और वो क्या है, महीयसाम पाद रजोभिषेकम निष्किंचनानाम न वृणीत यावत, कि जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तावत नैशा मतिस्तावत उरुक्रमांग्रीम, तब तक उरुक्रम भगवान श्री कृष्ण के चरणों के प्रति आकर्षण या आसक्ति जागृत नहीं होगी। और वास्तव में जब हम इस प्रकार से कृष्ण भावना भावित होते हैं तो अनर्थों का निवारण हो जाता है, नाश हो जाता है। इसलिए यहां पर प्रहलाद महाराज कहते हैं अनर्थ अपगमः, मतलब अनर्थ दूर चले जाते हैं, ओझल हो जाते हैं। कृष्ण भावना ही वो एकमात्र पथ है जिससे कि हमारे हृदय में जितने भी गलत चीजें हैं वो चली जाती हैं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि बहुत ज्यादा भौतिक शिक्षण प्राप्त करने से व्यक्ति साधारण तौर से, इसके लिए तो कई उदाहरण भी हैं, कि जो बहुत ज्यादा शिक्षा प्राप्त करने की वजह से भगवान के शरण में नहीं जा सकते, क्योंकि वो वैष्णवों के दास नहीं बनना चाहते हैं। हाँ, कई ऐसे भी हैं जो बहुत भाग्यशाली हैं, जिनके संस्कार इस प्रकार से हैं, जो शिक्षित होने के बावजूद भी, बहुत बुद्धिमान होने के बावजूद भी इस भाव का अनुशीलन करते हैं, भगवान के भक्तों के भक्त बनते हैं और दृढ़ता से भक्ति मार्ग में आगे चलते हैं। तो प्रभुपाद जी यहां तात्पर्य में लिखते हैं कि ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो बहुत ही शिक्षित व्यक्ति हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त कर ली हैं, जो संस्कृत पंडित हैं आदि, तो वो कृष्ण भक्ति के पथ को स्वीकार क्यों नहीं करते हैं। और प्रभुपाद कहते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर इस श्लोक में दिया हुआ है कि ये बड़े शिक्षित हो सकते हैं, संस्कृत भाषा में भी बड़े पंडित हो सकते हैं, परंतु जब तक ये वैष्णवों का शरण ग्रहण नहीं करते हैं, उनके दास नहीं बनते हैं, तब तक वो कृष्ण भावना भावित नहीं बन सकते हैं। प्रभुपाद जी मुंडक उपनिषद का एक श्लोक को यहां प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन, कि केवल भौतिक शिक्षण के बल पर हम आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, भले हम बहुत बड़े बड़े प्रवचन भी दे रहे हों। प्रवचेन लभ्य, भौतिक शिक्षण ये भौतिक जगत के भीतर ही है, हमें भौतिक जगत के भीतर ही रखेगा, भले हमें कोई श्रेष्ठ श्रेणी का जीवन प्रदान करेगा इस भौतिक जगत के भीतर, परंतु भौतिक शिक्षण हमें इस भौतिक जगत के परे नहीं ले पाएगा। उसके लिए तो केवल वो जो सामर्थ्य केवल भगवान के भक्तों के चरण धूलि में है, इतनी शक्तिशाली है। भक्त पद धूलि और भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशिष्ट ए तीन महाबल, ये आप सुन चुके हैं पहले। चैतन्य चरितामृत में भी कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, भक्त पद धूलि, चरण भगवान के वैष्णव भक्तों की चरण धूलि, भक्त पद जल, उनके चरणों को धोया हुआ जल, और भक्त भुक्त अवशिष्ट, उनका महाप्रसाद, ये तीन महाबल बहुत बलवान हैं। किस लिए बलवान हैं, क्या चीज करने के लिए बलवान है, ये हमें कृष्ण भक्ति प्रदान करने के लिए। तो इसी बात को यहां पर प्रहलाद महाराज कहते हैं कि चाहे कोई बड़ा वैज्ञानिक क्यों न हो, चाहे कोई कितना भी बड़ा पंडित क्यों न हो, उसे चाहिए कि वो पहले वैष्णवों का दास बने। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के मठ में एक बार एक सज्जन आए जो भक्त बनना चाहते थे, ब्रह्मचारी बनना चाहते थे। उन्होंने पीएचडी डिग्री प्राप्त कर ली थी। पीएचडी आप जानते हैं ना, पहले डिग्री करते हैं बीए, उसके बाद एमए करते हैं, उसके बाद फिर पीएचडी, उसको फिर डॉक्टर कहते हैं। तो वो आए वहां पर, तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनको सबसे पहली सेवा कौन सी थी मठ में, बर्तन मांजने की सेवा, जहां जो रसोई घर में जो बर्तन में रसोई होती थी फिर वो धोना पड़ता है, तो उनको वहां उस सेवा में लगा दिया। और पीएचडी उन्होंने प्राप्त की थी, इतनी ऊंचा शिक्षा, लेकिन बैठ के वहां बर्तन मांज रहे हैं। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का दर्शन था कि ठीक है, होंगे आप पीएचडी या जो भी आप होंगे, लेकिन जब आप भगवान को जानना चाहते हैं तो आपको वैष्णव का दास बनना चाहिए, सरल से सरल सेवा करने के लिए तैयार होना चाहिए। भगवान के दरबार में कोई भी सेवा ऊंची नहीं है, कोई सेवा नीची नहीं है, सब एक समान है। जब तक ये एक जो भाव होता है, गर्वित भाव होता है कि हम बाहर के संसार में दुनिया में ये हैं, तो हम भगवान के सामने या मंदिर में ऐसा नहीं कर सकते, हमारे आत्म सम्मान को ठोस पहुंचेगा, ये गलत विचार है। भक्त को ये चाहिए कि सारे बाह्य विचार को त्यागे और केवल अपने आप को वैष्णवों के शरण में लगाए, बस फिर सब कुछ हो जाएगा। जो व्यक्ति वैष्णवों का दास बनने के लिए तैयार हो जाता है, भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं उसके 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 ऊपर कि अवश्य ही कृपा बरसाते हैं। और वैष्णवों का दास होना इसके लिए सबूत क्या है, या प्रैक्टिकल दृष्टि से हम कैसे कर सकते हैं इस बात को? वैष्णवों का आदेश पालन करके और वैष्णवों के बीच में बिना कोई घमंड, बिना कोई अहंकार, बिना कोई सम्मान की अपेक्षा किए हुए रहना और साधारण से साधारण सेवा करने के लिए तैयार होना, किसी भी पद से आसक्त न होना, प्रतिष्ठा के लिए बिल्कुल लालच नहीं रखना, ये चीजें हैं जो बहुत प्रैक्टिकल हैं, जिसको हम मन में रख सकते हैं। जब प्रहलाद कहते हैं महीसाम पादरजोभिषेकम, तो इसका तात्पर्य ये है, इस प्रकार की भावना हमें रखनी चाहिए, तब जाकर भगवान की असीम कृपा हमारे ऊपर आएगी। क्योंकि भगवान कृपा देने के लिए बद्ध नहीं है, हम बाध्य नहीं कर सकते भगवान को कि मैंने इतनी तपस्या की है इसलिए आपको कृपा देना ही होगा। ये तो भौतिक जगत की भावना है। किसी कारखाने में किसी को कोई तनख्वाह नहीं मिली है तो सारे कर्मचारी एकत्र होकर फिर हड़ताल करेंगे, देना होगा देना होगा, मुर्दाबाद जिंदाबाद। लेकिन भगवान के दरबार में इस भावना से हम नहीं जा सकते, हमको कृपा मिलनी चाहिए मिलनी चाहिए। क्यों? हमने इतनी तपस्या की, इतनी आराधना की, इतना दान दिया, इतना ये किया, इसलिए हमको मिलना चाहिए। जैसे कारखाने में कर्मचारी कहते हैं मैंने इतने दिन काम किया अभी तनख्वाह मिलनी चाहिए, तो भगवान के साथ ऐसा नहीं कर सकते। भगवान कृपा केवल उसी को देंगे जिनको वो देना चाहते हैं, बस स्वेच्छा से। इसलिए मुंडक उपनिषद में और एक श्लोक है, यम ए वैश वृणुत एतेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुति तानुम स्वाम, कि भगवान उसी व्यक्ति के ऊपर कृपा बरसाएंगे जिसके ऊपर बरसाने के लिए वो चाहते हैं, बस। और फिर ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति के सामने वो अपना ही स्वरूप, अपना ही दिव्य रूप प्रकट कर देते हैं। जब प्रहलाद महाराज से ऐसी बातें हिरण्यकश्यप ने सुनी, क्योंकि ये तीसरी बार था ऐसा उपदेश दे रहे हैं, पहली बार तो हिरण्यकश्यप मुझे हंस दिए, दूसरी बार जो है क्रोधित हो गए थोड़ा, लेकिन कहा ठीक है जाओ, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए। हिरण्यकश्यप को अपने गोदी से धकेल के नीचे जमीन पे डाल दिया और बहुत ही क्रोधित हो गए, ऐसे रोष में आ गए कि उनकी आंखें जो है ताम्र की तरह, पिघले हुए ताम्र की तरह लाल लाल हो गए, और अपने सेवकों से कहने लगे कि हे असुर, इस बच्चे को ले जाओ और जितना जल्दी हो सके इसकी हत्या करो, और ये प्रहलाद जो है, ये बच्चा, ये मेरे भाई का हत्यारा है, क्योंकि उसने अपने ही परिवार को त्याग कर इस परिवार के शत्रु विष्णु का आश्रय ग्रहण कर लिया है और विष्णु का दास बन गया है ये। एक दृष्टि से देखा जाए तो हिरण्यकश्यप प्रशंसा कर रहे हैं कि देखो ये विष्णु का दास बन गया है, पर तो हिरण्यकश्यप इसको प्रशंसा नहीं मान रहे हैं, इसको निंदनीय मान रहे हैं। और फिर हिरण्यकश्यप कहने लगे, हालांकि ये बच्चा केवल 5 साल का है, फिर भी इस कम उम्र में उसने अपने पिता के साथ प्रेम का संबंध जो है वो तोड़ दिया है, और वो किस लिए? केवल उस विष्णु के लिए। जब ये प्रहलाद ने अपने माता पिता के साथ ऐसे किया है तो कौन विश्वास कर सकता है कि आगे जाके विष्णु के साथ भी ऐसा नहीं करेगा? ये मैं सोच रहा हूं कि आगे जाके ये विष्णु के साथ भी ऐसा ही करेगा। तो भौतिकवादी लोगों की दृष्टि ऐसी ही रहती है, वो समझते नहीं है भक्ति को। भक्ति को समझना और विशेष करके भक्ति के जो सूक्ष्म सिद्धांत होते हैं, तथ्य होते हैं, उनको समझना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि हिरण्यकश्यपु ने भक्तों का आश्रय नहीं लिया था इसलिए भक्ति को भी वो नहीं समझ पाए थे। और फिर हिरण्यकश्यप कहने लगे कि क्यों प्रहलाद को मारा जाना चाहिए, जब कोई औषधि वन में होती है, मनुष्य जो होता है उस औषधि को ग्रहण करता है। हालांकि मनुष्य और वो औषधि दो अलग अलग योनि के हैं, फिर भी उस औषधि को ग्रहण करता है, क्योंकि उस औषधि से कोई लाभ प्राप्त हो सकता है, वो व्यक्ति रोग मुक्त हो सकता है। उसी प्रकार हिरण्यकश्यप कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति हमारे परिवार के बाहर भी क्यों न हो, लेकिन अगर वो हमारे प्रति अनुकूल भावना रखता है तो हमें भी उसके प्रति अनुकूल भावना रखनी चाहिए और उसे पुत्र के समान उससे व्यवहार करना चाहिए। दूसरी ओर अगर हमारे शरीर के अंग में भी कोई ऐसे रोग हो जाए जिसको अगर नहीं रोका जाए तो सारे शरीर में फैल जाएगा और सारे शरीर को बर्बाद कर देगा और मृत्यु हो जाएगी, तो उस समय उस शरीर के अंग को काट देना चाहिए सारे शरीर की रक्षा के लिए। जैसे कभी कभी देखा जाता है कि किसी के पैर में, किसी की उंगली में कुछ भी गैंग्रीन जैसे हो जाता है, कोई बीमारी हो जाती है जो फैलती है, तो उस समय एक ही उपाय होता है कि उस उंगली को या पैर को या जो भी है काट दें शरीर की रक्षा के लिए, नहीं तो सारे शरीर भर फैल जाएगा। तो उसी प्रकार से हिरण्यकश्यप का कहना था कि हालांकि प्रह्लाद मेरे शरीर का अंग है, मेरे शरीर से उत्पन्न हुआ है, मेरे परिवार का अंश है, फिर भी ये इतना दूषित हो गया है कि अगर इसको यहां रखा जाए तो सारे परिवार को दूषित कर देगा, इसलिए इसको काट डालना चाहिए, इसको खत्म कर देना चाहिए। जिस प्रकार से अब हिरण्यकश्यप की आध्यात्मिक भाषा करने वाले में बोलने वाले हैं, जिस प्रकार से एक योगी के लिए जो आध्यात्मिक प्रगति चाहता है उसकी अनियंत्रित इंद्रियां उसकी बड़ी शत्रु होती हैं, उस प्रकार से ये लड़का हमारा शत्रु है क्योंकि मैं उसको नियंत्रण में नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए मेरा शत्रु है। और फिर हिरण्यकश्यप के आदेशानुसार जितने भी वहां राक्षस थे, हिरण्यकश्यप के अनुयायी, वो बहुत ही भयानक चेहरे लेकर जोर जोर से चीखते चीखते मारो इसको, मारो मारो, जोर जोर से आवाज करते हुए अपने शस्त्र सामने लेकर आए और आक्रमण करने लगे। यहां सुखदेव गोस्वामी उनका वर्णन करते हैं कि बहुत ही भयानक चेहरे थे उनके और बड़े बड़े दांत थे धार वाले, और उनके जो दाढ़ी और बाल है वो ताम्र वर्ण के थे, और इस प्रकार से आक्रमणात्मक भाव से आगे आने लगे और आक्रमण किया भी उन्होंने प्रह्लाद महाराज के ऊपर अपने अस्त्रों से। लेकिन उनको आश्चर्य हुआ ये देखकर कि जितने जोर से वो आक्रमण करें अपने तलवार से, अपने शस्त्रों से भगवान के ऊपर, प्रह्लाद के ऊपर आक्रमण करने से भी प्रह्लाद को कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल कुछ नहीं, और वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिस प्रकार से एक बच्चा जब अपनी मां की गोदी में होता है या अपने पिता की गोदी में होता है तो हर अवस्था में वो सुरक्षित होता है, तो ठीक उसी प्रकार से जो भक्त मन ही मन में पूरी तरह से भगवान का आश्रय लिया हुआ होता है, भगवान के ऊपर पूरी तरह से निर्भर होता है, उसे भी कोई डर नहीं, क्योंकि ऐसे भक्त को अवश्य भगवान सुरक्षित रखते हैं। तो ये राक्षस जो हैं, ये भगवान को देख नहीं पा रहे थे कि किस प्रकार भगवान प्रह्लाद की रक्षा कर रहे हैं, इसलिए वो भ्रमित हो गए कि हम लोग इतना आक्रमण कर रहे हैं फिर भी इस बच्चे को कुछ नहीं हो रहा है। और जब हिरण्यकश्यप ने देखा कि इन असुरों का प्रयास असफल हुआ तो वो चिंतित हो गए और फिर उन्होंने तरह तरह की तरकीबों को सोच लिया जिससे कि प्रह्लाद की हत्या की जा सके, और एक के बाद एक उन्होंने अपने सेवकों से कहा कि ये सब चीजें करो, हाथी के पैरों के नीचे डालो, एक ऐसे गड्ढे में डालो जहां जहरीले सांप हैं, उबलते ही हुए तेल के पात्र में उसे डाल दो। इस प्रकार से कई तरह तरह से प्रह्लाद को मारने का प्रयास किया। हिरण्यकश्यप ने प्रह्लाद को बहुत अपशब्द कहे, बहुत गालियां दी अपने ही पुत्र को, परंतु प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। और फिर हिरण्यकश्यप कहने लगे, वर्तमानो अभिदुरे वै बालोप्य अजड धीर अयम न विस्मरति मे अनार्यम शुनहशेप इव प्रभुः। हालांकि ये मेरे बहुत निकट है, वर्तमान अभिदुरे, मेरे से दूर नहीं है, बहुत निकट है, मेरा ही बच्चा है ये, इतना होते हुए भी ये बिल्कुल डरता नहीं है। और क्योंकि इसने संबंध अपने प्रभु विष्णु से बना लिया है, इसलिए मेरी बात नहीं मानता। और ये शुनह शेप है, एक कुत्ते के दुम की तरह है। कुत्ते के दुम के लक्षण क्या होते हैं? टेढ़े का टेढ़ा ही रहता है। हालांकि प्रहलाद तो बहुत सीधे थे, भक्ति होता है जो बहुत सीधा होता है। दुनियादारी में लोग आदमी को टेढ़ा होना पड़ता है। जैसे कोई लोग कहते हैं कि अगर आपको एक घी के बोतल से घी निकालना है तो केवल अंदर उंगली डालने से काम नहीं चलेगा, अंदर डाल के उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी तब घी निकलेगी बाहर। तो इसी प्रकार से संसार का भोग, आपको यहां का घी मक्खन सब चाहिए संसार का, तो थोड़ा टेढ़ा होना पड़ता है। वो संसार के लोग ऐसे टेढ़े होते हैं, लेकिन भक्त थोड़ी टेढ़े होते हैं, भक्त तो सीधे होते हैं। और प्रहलाद तो बेचारे सीधे सीधे थे बिल्कुल। हिरण्यकश्यप टेढ़ा था, इसलिए उसने सोचा कि ये भी टेढ़ा है। ये दुनिया की रीत है, दृष्टि ऐसे होती है। आत्ममान मन्यते जगत, जैसा मैं हूं मैं सारे जगत को वैसे सोचता हूं। अगर मैं लोभी हूं तो सबको लोभी सोचता हूं, मैं टेढ़ा हूं तो दूसरों को भी टेढ़ा समझता हूं। तो हिरण्यकश्यप टेढ़ा था, तो सोच रहा था प्रहलाद भी टेढ़ा है। कैसे टेढ़ा है? शुनह शेप, एक कुत्ते की दुम की तरह है। कुत्ते की दुम जो है किसी भी हालत में सीधी नहीं की जा सकती है। वास्तव में सत्य तो उल्टा था, हिरण्यकश्यप टेढ़े थे। क्योंकि प्रहलाद तो कह चुके थे, नते मतिर कृष्ण मतिर न कृष्ण परतः स्वतोवा मिथोभिपद्यत ग्रह व्रताणाम, कि हे पिताजी, आपकी मति कभी कृष्ण की ओर नहीं जाएगी, आप टेढ़े के टेढ़े ही रहेंगे। प्रहलाद के ये कहने का तात्पर्य था, परंतु हिरण्यकश्यप प्रहलाद को कह रहे हैं कि ये बच्चा तो कुत्ते की दुम की तरह है, कभी सीधा नहीं होता। और फिर हिरण्यकश्यप कहने लगे कि मैं अभी प्रत्यक्ष अनुभव कर रहा हूं कि इस बच्चे की शक्ति जो है असीमित है, क्योंकि मेरे इतने सारे दंड से उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा उसके ऊपर। और मुझे लगता है कि मेरी जो शत्रुता उसके प्रति है, इसकी वजह से शायद मेरी मृत्यु होने वाली है। अब हिरण्यकश्यप को डर होने लगा। और इस प्रकार से जब व्यक्ति डर जाता है ना, तो उसके शरीर की कांति, शरीर का तेज जो है वो मिट जाता है। तो हिरण्यकश्यप के शरीर का तेज खत्म हो गया और उदास होकर वो बैठ गया। और उस समय शंड और अमरक फिर से आए और हिरण्यकश्यप का हौसला बढ़ाने के लिए बोलने लगे कि हे महाराज, आप क्यों डरते हैं? क्या आप अपनी ही शक्ति को भूल गए हैं? केवल आपकी एक आंख यूं उठाने से जितने भी देवी देवता है सारे ब्रह्मांड में, जो सारे लोगों को लोगों के अधिपति हैं, वो घबराते हैं। और आपने तो तीनों लोगों को वश में कर लिया है, इसलिए हमें तो कोई कारण नहीं लगता कि आपको उदास होना चाहिए या प्रहलाद से डरना चाहिए। वैसे भी ये तो बच्चा है, बच्चा क्या बिगाड़ सकता है आपका? और जब तक हमारे पिता और हमारे कुलगुरु शुक्राचार्य नहीं लौटते हैं, वरुण के पाश से इस बच्चे को बांध के रखिए ताकि भयभीत होकर यह बच्चा कहीं भाग नहीं जाए। प्रहलाद तो भयभीत नहीं थे, नहीं प्रहलाद कहीं भागने वाले थे, परंतु शंड अमरक हिरण्यकश्यप का हौसला बढ़ाना चाह रहे थे। उस समय जब हिरण्यकश्यप ने ये बातें सुनी तो थोड़ा मन शांत हो गया उसका, ज्यादा नहीं थोड़ा सा। और फिर कहने लगा, ठीक है, तुम लोग जो बात कह रहे हो वो सही है, अभी भी ये बच्चा है, और अच्छा उपदेश दे दो इसको राजधर्म के बारे में। वर्णाश्रम धर्म में जो राजा का कर्तव्य होता है इसके बारे में अच्छा उपदेश दे देना। और फिर शंड और अमरक ने पुनः धर्म अर्थ काम के बारे में सिखलाना आरंभ किया और पूर्व की तरह ही प्रहलाद सुनते रहे ध्यान से, परंतु हृदय से त्यागते रहे, कुछ स्वीकार नहीं किया। और धर्म अर्थ काम की का उपदेश, संसार का भोग करने के नियम इत्यादि सब उपदेश करने के बाद प्रहलाद महाराज सुनते रहे लेकिन बिल्कुल प्रभावित नहीं हुए। जब शंड और अमरक बीच बीच में अपने घर में जाते थे अपने घरेलू कर्तव्यों को संभालने के लिए, तो प्रहलाद महाराज अपने मित्रों को एकत्र करके उनको भगवत कथा करते और बहुत ही सुंदर उपदेश हैं प्रहलाद महाराज के जो कि उन्होंने अपने मित्रों को दिए हैं। और ये काफी लंबा विषय है जो हम जब अगली बार बेलगाम आएंगे तो उस समय चर्चा करेंगे। तो प्रहलाद महाराज के दिव्य उपदेश उनके मित्रों के लिए बहुत ही अनुसरणीय बातें हैं, अमल करने योग्य, इसके बारे में हम अगली बार सुनेंगे। श्री नरसिंहदेव भगवान की जय। भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय। आपके कोई प्रश्न हो या टीका हो तो आप बोल सकते हैं। शुक्राचार्य, शुक्राचार्य सहायता करने के लिए क्यों नहीं आए प्रहलाद के? वैसे तो शुक्राचार्य बाहर गए हुए थे। अभी शंड अमरक ने कहा ना कि जब तक हमारे पिता शुक्राचार्य लौट के नहीं आए तब तक बांध के रखिए। पहली बात तो यह है कि शुक्राचार्य उस समय थे नहीं, कहीं बाहर गए हुए थे टूर पे। दूसरी बात, आपको याद होगा कि आगे भी चलकर प्रहलाद के जो पोते थे जिनका नाम था बलि महाराज, जब बलि महाराज के दरबार में भगवान वामन देव के रूप में आए और बलि महाराज ने वामन देव को दान देना चाहा और शुक्राचार्य समझ गए कि ये वामन देव वास्तव में भगवान विष्णु हैं, तो उन्होंने क्या करना चाहिए था? एक प्रामाणिक गुरु, सच्चा गुरु वो होता है जो अपने शिष्य को भगवान के शरण लेने में मदद करता है। परंतु शुक्राचार्य ने इसके विपरीत आदेश दिया कि नहीं नहीं, ये विष्णु है, नहीं दान दो, क्योंकि ये तुम्हारे सब कुछ छीन लेंगे। तो शुक्राचार्य तो असुरों के कुल गुरु हैं, तो फिर हम समझ सकते हैं कि उनकी भावना भी कैसी थी। जब उन्होंने बलि महाराज से कहा कि विष्णु के शरण में नहीं जाना, तो अब शायद यहां होते भी तो क्या करते? कुछ नहीं, नहीं करते। और कोई प्रश्न किसी के? यह प्रश्न है कि कृष्ण भावना एक पथ है जहां हमारे भौतिक अनर्थ चले जाते हैं, तो यह जप की क्वालिटी पर निर्भर है या इसके, या किस विषय के ऊपर निर्भर, किस चीज के ऊपर निर्भर है? कई चीजों के ऊपर निर्भर है। उसमें हमारा जप ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें रोज भगवान कृष्ण के पवित्र नामों का जप करना चाहिए माला के ऊपर। जो गंभीर हैं इस भक्ति मार्ग में वो कम से कम 16 माला तो रोज करेंगे, ध्यान से करने का प्रयास करेंगे। साथ साथ कीर्तन में भाग लेना भी बहुत महत्वपूर्ण है, आखिर कीर्तन ये युग धर्म है। साथ साथ मंदिर में आके प्रवचन सुनना, फिर घर में टेप रिकॉर्डर में कीर्तन सुनना, भजन सुनना, प्रवचन सुनना, घर में एक भक्तिमय वातावरण को बनाए रखना, घर में छोटा सा मंदिर का निर्माण करना यथाशक्ति, और वहां भोग चढ़ाना, घर में भी कीर्तन करना, प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ना, आलस कभी नहीं करना, वैष्णवों के दास बनकर सदा सेवा के लिए मंदिर में तत्पर रहना, ये सारी चीजें हम करेंगे तो अवश्य ही अनर्थों से शीघ्र ही मुक्त हो जाएंगे। तो प्रश्न ये है कि प्रवचन में कहा गया था कि भक्ति के सूक्ष्म सिद्धांतों को समझना मुश्किल है, परंतु इस संदर्भ में हमने सुना है कि भक्ति सरल है पर सहज नहीं है, सिंपल है लेकिन इजी नहीं है। प्रभुपाद कहा करते थे वास्तव में कि जो सरल है उनके लिए भक्ति सरल है, जो सरल नहीं है उनके लिए भक्ति बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति सरल है वो भगवान कृष्ण की वाणी को तुरंत स्वीकार कर देते हैं कि आपको वैष्णव को दास बनना है, बन गए, बस बात खत्म, आसानी से प्रगति कर लेंगे। जब हम उतने सरल नहीं होते इस दुनिया में कई जन्मों के रहने की वजह से, तो फिर हमारे मन में संदेह आता है, प्रश्न आता है, अरे मैं क्यों बनूं, कैसे बनूं, अरे दूसरे देखेंगे तो क्या होगा, तो तरह तरह के प्रश्न आते हैं। और रहूंगा तो वैष्णवों के दास बनूंगा लेकिन उनके पास नहीं जाऊंगा, उनके शरण उनका दास नहीं बनूंगा। तो हमारा मन जो है कई तरह तरह के कारण हमें प्रदान करता है। इस प्रकार से भक्ति हमारे लिए फिर कठिन हो जाती है। हम सरल रहेंगे, भगवान और वैष्णवों के उपदेशों को सरलता से जैसे है वैसे ग्रहण करेंगे तो भक्ति बहुत सरल है, सहज भी है सरल भी है, दोनों। और कोई बात? हरे कृष्णा। प्रश्न ये है कि जब ब्रह्मा जी शिव जी आदि ऐसे वरदान देते हैं, क्या वो सोचते नहीं है, सीधे तथास्तु कह देते हैं? हाँ, इसलिए तो जब ब्रह्मा जी नरसिंहदेव भगवान के पास आए हिरण्यकश्यप के वध के बाद, तो जाते जाते जब हिरण भगवान नरसिंहदेव अब स्वधाम लौट के जा रहे थे, उसके पहले ब्रह्मा जी को बुलाया, देखो ब्रह्मा जी मुझे आपसे कुछ कहना है। कहने लगे कि जिस प्रकार से एक जहरीले सांप को दूध देने से उसका विष बढ़ जाता है, उसी प्रकार से एक असुरी प्रकार असुरी व्यक्ति असुरी वृत्ति के आदमी को वरदान देने से वो बहुत उत्पात कर देता है, बहुत तकलीफ में सबको डाल देता है। इसलिए मैं चेतावनी देता हूं आपको कि जरा सोच के आप करना ऐसे। तो जाते जाते भगवान बोल के गए, आप लोग तो वरदान दे जाते हो फिर समस्या आती है, फिर मुझे आना पड़ता है। लेकिन भगवान तो पूरी तरह से समर्थ हैं, किसी भी प्रकार का वरदान क्यों ना हो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकालेंगे भगवान। और भक्त की ब्रह्मा जी की लाज भी बचाएंगे, साथ साथ जो असुर का वध है वो भी कर देंगे। दूसरी बात यह है कि ब्रह्मा जी शिव जी आदि एक दृष्टि से बाध्य हो जाते हैं उनके उपासकों के प्रति। ये है देवताओं की पूजा और भगवान की उपासना में अंतर। देवतागण जो है उनके उपासकों की उपासना से बाध्य होकर वरदान देते हैं, परंतु भगवान से बाध्य नहीं है। इसलिए हमें देवी देवताओं के पास इस प्रकार से उपासना करने की कोई आवश्यकता नहीं, हमारे लिए भगवान ही पर्याप्त हैं। ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री नरसिंह देव भगवान की जय। भक्तराज प्रह्लाद महाराज की जय। गौर प्रेमानंदे।